ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا آج یوم ولادت باسعادت ہے، آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اسی طرح اپنے عیسائی و مسیحی ناظرین کی خدمت میں بھی نئے عیسوی سال کی تبریک پیش کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے ہندوستان میں لوک پال بل پر بحث، تنازع اور راجیہ سبھا میں اس کا پاس نہ ہونا اور معلق ہو جانا۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، ہندوستان کے تناظر میں ان دنوں سب سے بڑی خبر لوک پال بل اور اس پر اٹھنے والی اور ہونے والی بحث ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ کئی ہفتے سے لوک پال بل، بلکہ یوں کہا جائے کہ گزشتہ کئی مہینے سے اس پر بحث چل رہی تھی، مگر حکومت نے مسودہ تیار کیا اور اس کو پارلیمنٹ میں یعنی ایوان زیری میں پیش کیا، اور ایوان زیری میں بھی مختلف جماعتوں کے درمیان گرما گرم بحث ہوئی، اور بالآخر 10 گھنٹے کی بحث و تمیز اور مباحثے کے بعد یہ بل لوک سبھا میں معمولی اکثریت سے ہی صحیح پاس ہوا، اور یوں حکومت کے چہرے پر وقتی مسکراہٹ دیکھنے کو ضرور ملی۔ لیکن جب یہ بل راجیہ سبھا یعنی ایوان بالا میں پیش کیا گیا تو وہاں پر چونکہ حکومت یا اتحادی جو دھڑا ہے اس کی اکثریت بھی نہیں تھی، اور خاص طور پر حکمراں جماعت کانگریس ظاہر ہے کہ وہاں پر اقلیت میں تھی، اس کے پاس اکثریت نہ تھی، تو اسے پہلے سے ہی راہ کٹھن، دشوار، مشکل اور سخت دکھائی دے رہی تھی۔ اور ہوا بھی یہی کہ غیر تو غیر راجیہ سبھا میں اپنوں نے بھی حکومت کا ساتھ چھوڑ دیا۔ چنانچہ حکومت میں شامل ترنمول کانگریس جیسی اتحادی جماعت نے بھی حکومت کی طرف سے پیش کردہ مسودہ بل کی حمایت نہ کی، اور یوں بل معلق ہو گیا اور پاس نہ ہو سکا۔ وزیراعظم منموہن سنگھ نے نئے عیسوی سال کی آمد کی مناسبت سے اپنے پیغام میں کہا کہ راجیہ سبھا میں بل کا پاس نہ ہونا، لوک پال بل کا پاس نہ ہونا افسوسناک ہے، لیکن حکومت اپنے اس فیصلے میں اور اپنے اس عزم و ارادے میں مصمم ہے کہ وہ اس بل کو پاس کرا کے ہی دم لے گی۔ ظاہر ہے کہ کیسے پاس کرائے گی اور کیوں کر پاس ہوگا، یہ وہ سارے سوالات ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں اٹھ رہے ہیں۔ اگرچہ منموہن سنگھ صاحب نے کہا ہے کہ اہم قدم اٹھا لیے گئے ہیں بدعنوانی کے خاتمے کے لیے، مگر اس کے لیے صبر و ضبط سے کام لینا ہوگا۔ بہرحال اب جبکہ راجیہ سبھا میں یہ بل پاس نہ ہو سکا اور معلق رہ گیا، تو حکومت کے سامنے بہت ساری مشکلات مبصرین کا کہنا ہے کہ ہیں۔ کیا حکومت وہ تبدیلیاں لانے پر مجبور ہوگی جس کے بارے میں بی جے پی خود اس کی اہم اتحادی جماعتیں بھی مطالبہ کر رہی ہیں کہ مسودے میں ترمیم کی جائیں، یا اسی شکل میں دوبارہ پیش کرنے کی کوشش کرے گی اور بحث و مباحثے کے بعد اس کو پھر ووٹنگ کے لیے رکھے گی؟ حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ بجٹ اجلاس کے موقع پر یہ بل ایک بار پھر راجیہ سبھا میں پیش کیا جائے گا۔ بظاہر اس وقت ہمارے دہلی اسٹوڈیو میں موجود ہیں حکمراں کانگریس پارٹی کے ترجمان اور رکن پارلیمنٹ سینئر رہنما کانگریس کے جناب راشد علوی صاحب۔ راشد علوی صاحب، السلام علیکم۔ جی، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی آواز ہماری صاف نہیں پہنچ پا رہی ہے راشد علوی صاحب کی خدمت میں، تو بہرحال پوری رات تو نہیں کر سکتے، لیکن رات دیر گئے تک بحث ہوتی رہی، اور بھارتی جنتا پارٹی نے جہاں یہ کہا کہ یہ بل عوام کی امنگوں، ان کے جذبات اور ان کے احساسات کی ترجمانی نہیں کرتا، وہیں سماجوادی پارٹی، بہوجن سماج پارٹی اور کمیونسٹوں نے بھی اس کی مخالفت کی، اور بعض حلیف جماعتوں نے بھی اگرچہ بل کی حمایت کی لیکن بعض شقوں پر تحفظات کا اظہار کیا۔ تو اب ہوگا کیا؟ اس درمیان بعض مبصرین اور بعض حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ بل کا پاس نہ ہونا کہیں نہ کہیں کانگریس کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، اور وہ بھی ایک ایسی صورت میں جب آئندہ چند ہفتوں کے بعد ملک کی 5 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں، اور خاص طور پر ملک کی سب سے بڑی ریاست اور مرکز کی جانب اقتدار کے راستے کی نشاندہی کرنے والی ریاست اتر پردیش میں الیکشن ہونے والے ہیں۔ تو ایسے میں کانگریس عوام کے سامنے یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم نے تو بدعنوانی کے خاتمے کے لیے بل پیش کیا، لیکن بھارتی جنتا پارٹی اور دیگر جماعتوں نے اس کی مخالفت کی۔ تو کیا بھارتی جنتا پارٹی اور دیگر جماعتوں پر یہ الزام لگ سکتا ہے کہ اس نے بدعنوانی کے خاتمے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی، اور حکومت یا کانگریس پارٹی واضح طور پر عوام کے سامنے اس دعوے کے ساتھ جا سکتی ہے کہ ہم نے تو بدعنوانی کے خاتمے کے لیے پوری کوشش کی، لیکن حلیف یا حریف بعض سیاسی جماعتوں نے اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی۔ پھر چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو، راشد علوی صاحب کانگریس پارٹی کے ترجمان اور سینئر لیڈر کانگریس کے اور ممبر پارلیمنٹ موجود ہیں۔ راشد علوی صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
راشد علوی صاحب، راجیہ سبھا میں غیر تو غیر اپنوں نے بھی ساتھ نہ دیا آپ کا، کیوں؟
دیکھیے، سوال یہ نہیں ہے کہ غیر اور اپنوں کا سوال نہیں ہے۔ راجیہ سبھا کے اندر ہماری اکثریت نہیں، کانگریس پارٹی کی اکثریت نہیں، اور چونکہ کانگریس پارٹی کی اکثریت نہیں ہے اس لیے ہم دوسرے سیاسی جماعتوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتے تھے۔ لوک سبھا میں ہماری اکثریت ہے، لوک سبھا میں ہم نے قانون کو پاس کرایا۔ بھارتی جنتا پارٹی خاص طور سے اور دیگر اپوزیشن پارٹیز، وہ سب لگاتار لوک پال بل بنانے کی بات کرتے تھے، لوک پال ہونا چاہیے، سخت لوک پال بل بننا چاہیے۔ ہم ایک سخت لوک پال بل لے کر آئے، لوک سبھا کے اندر پاس کرایا، اور ہمیں توقع تھی کہ راجیہ سبھا کے اندر وہ تمام سیاسی جماعتیں جو لوک پال کی بات کر رہی ہیں، سخت لوک پال کی بات کر رہے ہیں، وہ ہمارا ساتھ دیں گے اور پاس کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن بدقسمتی کی بات ہے، اور اس سے ان سیاسی جماعتوں کا کردار بھی پتہ چلتا ہے کہ باہر کیا کہتے ہیں، اندر کیا کہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوک پال راجیہ سبھا کے اندر پاس نہیں ہو پایا۔ لیکن ہم نے پورے ملک کو یہ یقین دلایا ہے اور ہمارا یہ کمٹمنٹ ہے کہ بجٹ سیشن میں جو فیبروری میں شروع ہوگا، اس کے اندر ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس قانون کو بنوانے میں ہم کامیاب ہو سکیں۔
جی، تو راشد علوی صاحب، کیا یہ بل اسی موجودہ شکل میں بھی آپ دوبارہ پیش کریں گے، یا اس میں کچھ ترمیم ہوگی، جیسا کہ خود ترنمول کانگریس اور آپ کی بات جو دیگر دوست یا حلیف جماعتیں انہوں نے بھی مطالبہ کیا؟
دیکھیے، یہ تبدیلی یقیناً کی جا سکتی ہے، چونکہ اگر ہم اکیلے اس کو پاس نہیں کرا سکتے، دوسری سیاسی جماعتوں کی مدد کی ضرورت پڑے گی، تو ظاہر ہے ان تمام سیاسی جماعتوں سے مشورہ کرنا ہوگا۔ یہاں پہ قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ قانون لوک سبھا میں پاس ہو کے آیا، اور اس کے باوجود راجیہ سبھا میں 187 امینڈمنٹس پیش کر دیے گئے۔ جن پارٹیز نے لوک سبھا میں پاس کیا تھا، وہ راجیہ سبھا میں امینڈمنٹ چاہتے، اور وہ بھی 187 امینڈمنٹس۔ تو یقیناً میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ضرورت ہوگی تو اس میں امینڈمنٹ کیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر امینڈمنٹ کیے جائیں گے تو واپس یہ بل لوک سبھا کو بھیجنا ہوگا، لوک سبھا دوبارہ ان پہ غور کرے گا، اور اس کے بعد ہی یہ قانون بن پائے گا۔
جی، اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں حزب اختلاف کے دھڑے میں شامل جنتا دل یونائٹیڈ کے ممبر پارلیمنٹ علی انور انصاری صاحب۔ علی انور انصاری صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
علی انور انصاری صاحب، آپ لوگوں کا مطالبہ تھا کہ ایک مضبوط لوک پال پیش کیا جائے، پاس کرایا جائے، ملک میں نافذ کیا جائے، تو جب حکومت نے پیش کیا اور پارلیمنٹ یا لوک سبھا میں پاس بھی ہو گیا، تو پھر راجیہ سبھا میں اس کی مخالفت کیوں کی آپ نے، بھارتی جنتا پارٹی نے؟
دیکھیے، سرکار کی منشا بالکل نہیں تھی उसको पास कराने की, और वो भाग खड़े हुए, उनको वोटिंग कराना चाहिए था। हम लोगों ने तो कहा कि जो हम लोग अमेंडमेंट दिए हैं उस अमेंडमेंट को कबूल कीजिए और पूरी रात बैठ करके इसको पास करने के लिए तैयार हैं। सभापति को, चेयरमैन को ये अधिकार है कि 12 बजे के बाद भी दूसरा, हालांकि वो डेट दूसरा हो जाता तो उनको राइट है, और ऐसा एग्जाम्पल पहले है कि बढ़ा है तो वो बढ़ा सकते थे, अगले दिन भी ये बैठक हो सकती थी, लेकिन उन्होंने वोट नहीं किया, कराने दिया, और आरजेडी के लोगों से मिलकर हंगामा कराने की कोशिश किए। इस ट्रैप में हम लोग नहीं आए तो उन्होंने एक तरफा ये ऐलान कर दिया कि ये अनिश्चितकाल के लिए ये इसको हम बैठक को खत्म करते हैं। तो ये सवाल है, हम लोग तो बिल्कुल यहाँ के तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंडिया के सबने एक मत से कहा है कि सरकार वोट नहीं कराना चाहती थी, वो पीछे हट गई, वो भाग खड़ी हुई। तो इस तरह से हम लोग तो उसमें कह रहे थे कि उसको मजबूत बनाइए, जो बिल आप लेके आए हैं वो तो मजबूत नहीं है, उस पर तो सरकार का कब्जा है, तो सरकार जिसको चाहेगी बहाल करेगी, जिसको चाहेगी हटा देगी, तो ऐसे तो होगा नहीं। तो सीबीआई का मामला था, सीबीआई को हम लोग चाह रहे थे कि ऑटोनोमस बनाइए, सीबीआई को मिसयूज करते हैं आप, तो इसीलिए हम लोगों ने ये किया। हम लोग तो तैयार ही थे, वो नहीं तैयार हुए।
जी राशिद अलवी साहब, सुना आपने कि हुकूमत खुद वोटिंग कराना ही नहीं चाहती थी, क्या जवाब है?
देखिए जो लोग इस तरीके की बात करते हैं वो गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी पास ना कराना चाहती तो लोकसभा में क्यों पास कराती? हमने तो लोकसभा में पास कराया, उसके बाद राज्यसभा आए, और राज्यसभा में हमारी मेजोरिटी नहीं है। लोकसभा के अंदर हम किसी दूसरी सियासी जमात पर डिपेंड नहीं करते थे, जहां हम डिपेंड नहीं करते थे वहां पे हमने पास करा दिया। राज्यसभा में हमारी अक्सरियत नहीं है। दूसरी बात यह कि एक गलतफहमी जो लगातार भारतीय जनता पार्टी पैदा करती है वो ये करती है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं, वो चाहते तो इसे बढ़ा सकते थे। ये गलत है। राज्यसभा और लोकसभा का सेशन सदर जमहूरिया वही बुलाते हैं, वही इजाजत देते हैं कब से कब तक चलेगा। हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सदर जमहूरिया की तरफ से बाकायदा दावतनामा जाता कि फलां तारीख से पार्लियामेंट शुरू होगा, आप तशरीफ लाइए, फलां तारीख तक पार्लियामेंट चलेगा। अगर पार्लियामेंट को एक्सटेंड करना होता है तो सदर जमहूरिया से फिर अप्रूवल लेना होता है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स इस कानून से वाकिफ हैं, लेकिन वो जानबूझकर, चूंकि आमतौर से लोगों को मालूम नहीं होता है, इस तरीके का जुमला कहेंगे कि हम तो सारी रात बैठने के लिए तैयार थे, ताकि लोगों को यह गलतफहमी हो कि वो तो सारी रात बैठने के लिए तैयार थे, हम लोग बैठने के लिए तैयार नहीं थे। और यहां पे एक बात और कहना मैं जरूरी समझता हूं, अगर वो कानून कमजोर भी है तो लोकसभा में तो पास हुआ था, आप राज्यसभा में इसे पास होने देते? ये सेशन कोई आखिरी सेशन नहीं था हिंदुस्तान की पार्लियामेंट का, आप अगले सेशन के अंदर अमेंडमेंट ला सकते थे, और अगर जरूरत होती तो यकीनन उसके अंदर तब्दीलियां लाई जा सकती थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग देश को, मुल्क को, मुल्क के लोगों को गुमराह करना चाहते।
जी बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में राशिद अलवी साहब। अंसारी साहब, कांग्रेस पार्टी या बाज हलके ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तो बिल पेश किया और वो बदउनवानी के खात्मे के लिए आगे बढ़ी, लेकिन आप लोग जनता दल यूनाइटेड या भारतीय जनता पार्टी या जो इत्यादी जमाते हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो लोग जो ऐवान के बाहर ये बातें कर रहे थे कि बदनवानी का खात्मा होना चाहिए, तो ऐवान में जब ये मसला पेश किया गया तो बदनवानी के खात्मे के लिए वही पीछे हट गए। तो इस इल्ज़ाम को आप अवाम के सामने कैसे दफा के लिए रखेंगे और कैसे इसका दफा करेंगे आप?
नहीं देखिए, हम लोगों का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था। लोकसभा में भी हम लोगों ने कहा कि जो इंडिया का जो कंस्टिट्यूशन है वो फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारा स्टेट का जो है सब मिला करके वो एक इंडिया बनता है, सेंटर बनता है, तो हमारे फेडरल जो हमारा है स्ट्रक्चर उसमें स्टेट के जो राइट्स हैं, जिस पर स्टेट को कानून बनाना है उसमें अगर आप दखल दे रहे हैं तो ये मुनासिब बात नहीं है। आप लोकपाल को बना रहे हैं लेकिन स्टेट पर लोकायुक्त के लिए उसको मैंडेटरी कर रहे हैं, लेकिन मैंडेटरी आप मत करिए, एक मॉडल बना करके दीजिए, उसमें से जो हमको चुनना होगा अपने हालात के मुताबिक हम चुनेंगे, जिसको अपने हालात के मुताबिक बनाएंगे। मिसाल के तौर पर हम लोगों ने बिहार में नीतीश कुमार जी की हुकूमत है, वहाँ वजीर आला है वहाँ के, तो उन्होंने एक बढ़िया लोक आयुक्त बिल बनाया है, उसको बनाने में सरकार का कोई हाथ नहीं है, हटाने में सरकार का कोई हाथ नहीं होगा, चीफ मिनिस्टर उसमें शामिल हैं, उसके दायरे में आते हैं। तो इस तरह से हम लोग चाहते थे कि आप स्टेट पर छोड़ दीजिए, ये तमाम रीजनल पार्टियों की मांग थी, तो वहां हम लोगों ने किया, चूंकि वहां इनका बहुमत था वहां पास करा लिया, दो तिहाई बहुमत, ये तो उसको कंस्टिट्यूशनल स्टेटस देना चाहते थे, लेकिन इनको टू थर्ड मेजोरिटी वहां नहीं थी, इसलिए वहां ये डिफीट हो गए। और अब देखिए राज्यसभा में आया तो इनके जो एलआई हैं तृणमूल कांग्रेस हैं, इनको जो लोकसभा में जो एसपी समाजवादी पार्टी, बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी, लालू जी की पार्टी, इन सब लोगों ने बाइकाट करके इनको मदद किया, यहाँ आकर के सब उनका थूथू हुआ अपने अपने स्टेट में, अपनी अपनी पार्टी में, सब लोगों ने कहा कि ये क्या किया आप लोगों ने, तब जा करके इन लोगों ने यहाँ विरोध करना शुरू किया। तो हम लोग तो वहां भी विरोध किए, यहाँ भी विरोध किए। और दूसरी बात, जिनके दबाव में ये अन्ना हजारे साहब के और उनकी टीम के दबाव में ये जो कानून बनना शुरू हुआ, तो वो भी इससे सहमत नहीं, वो भी कह रहे हैं कि ये बेकार का कानून है, इससे कोई करप्शन को आप नहीं रोक सकते हैं। और असल मुद्दा ये सीबीआई को लेकर है, सीबीआई पर ये अपना अपना कब्जा जमाए रखना चाहते हैं, सीबीआई को ऑटोनमस नहीं होने देना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इनके कब्जे में नहीं है। उसी तरह से हम लोग चाहते थे कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, एक अपना जो चाहता है वो करता है, उसी तरह से सीबीआई को होना चाहिए। तो ये सीबीआई का कब्जे हमेशा गलत इस्तेमाल करते रहते हैं अपने विरोधियों के को दबाने के लिए, उनको तंग करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए। तो हम लोगों ने कहा, और अपने लोगों को बचाने के लिए, ये अगर सीबीआई ऑटोनोमस होती तो इनके चिदम्बरम साहब आज जेल में होते, जिस तरह से ए राजा जेल में है वो जेल में होते, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित आज जेल में होती, लेकिन वो अपने चूंकि सीबीआई इनके कब्जे में है तो उनको उस पर हाथ नहीं देने देते हैं। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि सीबीआई को ऑटोनोमस बनाइए, हम मजबूत बिल बनाना चाहते हैं, लेकिन ये कमजोर बिल लेकर के आए हैं, ये आप अपने मन के मुताबिक करना चाहते हैं, तो ये तो डेमोक्रेसी है, आपका जहाँ बहुमत है आपने अपना मनमानी कर दिया, लेकिन जहाँ हमारा बहुमत है हम आपको हम नहीं पास होने देंगे।
जी बहुत शुक्रिया, आप टेलीफोन लाइन पर रहिएगा। अली अनवर अंसारी साहब, मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। इस वक्त दिल्ली से ही टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कौमी सेक्रेटरी जनाब अतुल कुमार अंजान साहब। अंजान साहब आदाब से।
आदाब
अंजान साहब, हमारे मेहमान इस वक्त आपके अलावा भी हैं जनता दल यूनाइटेड के मेंबर पार्लियामेंट अली अनवर अंसारी साहब और हुक्मरान कांग्रेस पार्टी के तर्जमान और मेंबर पार्लियामेंट राशिद अलवी साहब और तीसरे आप हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लोकपाल बिल के मसौदे में आपकी जमात को, आपकी पार्टी को या बाएं महाज को क्या खामियां नजर आई?
लोकपाल बिल तो देश की जरूरत है, लोकपाल बिल को लाया जाना चाहिए, लोकपाल की जरूरत है इस मुल्क में। 42 सालों से इस मुल्क में लोकपाल की चर्चा होती रही है किसी न किसी के द्वारा। इन 42 सालों में 8 बार कांग्रेस पार्टी लोकपाल के बिल को लेके आई और 8 बार उस लोकपाल बिल की पार्लियामेंट में हत्या कर दी गई। 2 बार बीजेपी के लोग लेके आए लोकपाल बिल, उन्होंने भी उसको जो है उसकी हत्या कर दी। अब ये जो बिल लाया गया है, ये लाया कोई कांग्रेस की नेक नीति का बिल थोड़ा ही है, ये तो आवाम का एक गुस्सा उठा। आवाम इस बात को कहती रही कि कितने बार आप छलेंगे, ये देश के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ गया है। भाई बताइए, गौर कीजिए, 3 साल के अंदर 4 लाख करोड़ देश के खजाने से लुट गए आंखों के सामने। ये राजा बताइए, आजाद हिंदुस्तान में कभी कोई मरकजी काबीने का मेंबर जो है जेल थोड़ी गया है। वो गए कांग्रेस पार्टी के सेक्रेटरी जेल में गए, मंत्री जेल में गए, चीफ मिनिस्टर की लड़की जेल में गई, और वो कांग्रेस पार्टी की तरफ, वो सरकार की तरफ से नहीं गई, वो तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से गई। सरकार से इन लोगों को बचाती रही। अभी तो मुकदमा नहीं, जरा आगे बढ़े तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के खिलाफ गलत हलफनामा सुप्रीम कोर्ट के सामने दाखिल करने का एक मुकदमा हम लोग चलावेंगे। और हम समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर हर आदमी को उसके साथ खड़ा होना चाहिए ताकि एक नजीर बन जाए कि सरकार झूठ न बोलने पाए। तो लोकपाल का बिल सरकार की को मजबूरन लाना पड़ा, और ये मजबूरी में लाया बिल इस तरह है कि इसको मारने की भी कोशिश करना चाहते थे और एक तरह से जिलाने की भी कोशिश करना चाहते थे। और उसी तरह से इन्होंने जिला लोकसभा में पारित कराया, राज्यसभा में जिस तरीके से भागी है कांग्रेस पार्टी वहां से छोड़ करके, सारे पार्लियामेंट के सारे इतिहास को खत्म, सारे कानून को खत्म करके रात 12 बजे। और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी इन सब पूरे गलत खेल में हिंदुस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशनल संघी और जो हमारी एक इदारे हैं, चाहे वो जिनको सदर हिंदुस्तान मुंतखब करते हैं, चाहे वो CAG का सवाल हो और चाहे वो क्या कहते हैं CVC का सवाल हो और चाहे वो क्या कहते हैं चेयरमैन के सवाल हो, उन सबको ये लोग अपने साथ जोड़ लेते हैं अपने अपने भ्रष्टाचार में। इस पूरे कार्यक्रम के अंदर मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि राज्यसभा के सभापति को भी सरकार ने अपनी चालों के साथ जोड़ करके, जिस तरह से रात के 12 बजे एकदम से पार्लियामेंट छोड़ करके सरकार भगी बिल को फेंक करके, ये आजाद हिंदुस्तान के 63 साल के जमहूरी निजाम में कहीं नहीं हुआ, जमहूरियत के तौर तकाजों में।
अंजान साहब, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि तारीख बदल रही थी और जाहिर है कि आइन के मुताबिक उसके बाद ये बहस नहीं हो सकती थी, हम फरवरी में बजट इजलास में फिर ये बिल पेश करेंगे। तो
जानबूझ करके ये क्यों नहीं पहले पार्लियामेंट बुला लिया था? अरे सब तो सरकार के कहने पर होता है। जैसे एक दिन पहले मुस्लिम आरक्षण बिल लेकर के आए हो, यूपी के चुनाव के ऐलान होने से एक दिन पहले वादा किए हुए थे 5 साल से, एक दिन पहले ले आए, 2004 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में था, 2009 के मैनिफेस्टो में था, और वो भी मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया है, OBC को दिया है, और OBC जो है सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों को दिया है, कह रहे हो कि मुस्लिम आरक्षण है, एक दिन पहले ऐलान के। तो वैसे पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जा सकता था, और राज्य अगर सरकार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से जो सदन के सभापति है राज्यसभा के अपील करती कि इसको और बहस को बढ़ाने का है तो बहस बढ़ जाता। संसद के अंदर ऐसे भी मौके आए इंदिरा गांधी के जमाने में जब प्री रिपर्स के समान पर रात के 12 बजे हुई है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के सवाल पर सरकार ने कहा कि बहस जारी रहनी चाहिए, बहस जारी रही और बात अहले सुबह पास हुआ है। तो वो जमाने हैं 69 के, तो हमारे पास तो नजीरें बहुत है। कांग्रेस पार्टी के लोग ये समझते हैं कि लोगों को याद नहीं रहता है तो वो लोग दूसरी झूठ और फरेब की बातें करती है, ऐसा कुछ नहीं है। कोहन स्पीकर हमारे सभापति जी ने कहा, वो जिस तरह से मीटिंग को कागज को फड़वाया गया और फड़वा करके एक MP से, और फिर मीटिंग को राज्यसभा की मीटिंग को एडजर्न किया गया, थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया, फिर सभापति महोदय ने अपने कमरे में सत्तारूढ़ दल की सरकार से 10 लोगों से बात की, उसके बाद मीटिंग फिर शुरू हुई राज्यसभा की, और सरकार की तरफ से जिन्होंने मूव किया था 20 मिनट का, उससे पहले 5 मंत्री बोल चुके थे, तब भी मीटिंग करके रात में एकदम से कहा कि अब समय नहीं है और हाउस जो है सदन समाप्त किया जाता है। उपराष्ट्रपति क्या ने सदन के सभापति ने उसका ऐलान किया और वो चले गए और हाउस में सब सन्नाटा छा गया, बेचारे सब दे। और मैंने तो आपको ये बता दें, आपको यहां बता दें कि 29 तारीख को जब ये बहस चल रही थी शाम को 6:30 बजे, मैंने स्टार TV के 2 घंटे के अपने कार्यक्रम में
इस बात को 6:30 बजे कहा था कि सरकार रातों रात भागेगी, सदन चलाएगी नहीं, छोड़ करके भागेगी, क्योंकि सदन में उसका आंकड़ा नहीं है।
जी
वही हुआ।
बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँ अतुल कुमार अंजान साहब आपकी खिदमत में। राशिद अलवी साहब कांग्रेस पार्टी के तर्जमान हैं, दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं। राशिद अलवी साहब, हिंदुस्तान में बाज हलकों का ये कहना है कि जब हुकूमत टीम अन्ना हजारे के अफराद को बुलाकर बिल के मसौदे पर सलाह मशवरा कर सकती है, तो वो अगर हिजब इख्तलाफ की जमातों को, अपोजिशन पार्टियों के भी कुछ लोगों को बुलाकर उस पर सलाह मशवरा करती और फिर तैयार करके पार्लियामेंट में के दोनों ऐवानों में पेश करती तो शायद ये सूरत हाल पेश ना आती। कहाँ तक मुत्तफिक हैं आप बाज़ मुबसरीन के इन ख्याल से?
देखिए, हमने जितनी ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन से, लोगों से बात कर सकते थे, मशवरा कर सकते थे, उनसे मशवरा किया। स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट की एक ऐसी कमेटी है जिसके अंदर तमाम सियासी जमातों के मेंबर्स रहते हैं, उसने एक एक क्लॉज पर लोकपाल बिल के गौर गौज किया, अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट को पेश की। अन्ना की टीम के 5 लोगों से बैठकर बातचीत हुई, मशवरा किया गया। यूपीए जो हमारे अपने एलाइज हैं उनके साथ मीटिंग हुई, उनसे मशवरा किया गया। अपोजिशन पार्टीज के लोग, उन सबसे मशवरा किया गया। तमाम सियासी जमातों की मीटिंग बुलाई गई और इसके साथ साथ अखबारात के अंदर बाकायदा स्टैंडिंग कमेटी ने इश्तहारात दिए कि जो भी हिंदुस्तानी अपना मशवरा देना चाहता है वो दे सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बात मैं बहुत बार कह चुका हूं और आपके चैनल पे भी कहना चाहता हूं, अलहदा अलहदा लोगों के अलहदा अलहदा राय होती है। सख्त कानून की कोई तारीफ नहीं हो सकती, एक तारीफ नहीं हो सकती है, हर आदमी उसकी अलहदा अलहदा तारीफ करेगा। फैसला कौन करेगा? इसका फैसला कौन करेगा कि कैसा कानून बनना चाहिए? देश के लोगों ने 5 साल के लिए हमें बरसरे इख्तदार बनाया है, इख्तदार हमारे हाथों में दिया है, और जिस जमात के हाथों में इख्तदार होता है वो चाहे हिंदुस्तान हो या ईरान हो, आखिरी फैसला वो करता है। अगर हम फैसला गलत करते हैं तो किसी भी जमहूरियत के अंदर 5 साल के बाद या जो भी वक्त होता है जिस मुल्क के अंदर, अवाम के बीच जाना होता है। अपोजिशन अवाम के बीच जाके कह सकता है कि इन्होंने ये गलती की है, आखिरी फैसला देश के आवाम करेंगे। लेकिन यह कोई तरीका नहीं है कि आप पार्लियामेंट के अंदर हंगामा करें, पार्लियामेंट को चलने न दें, 187 अमेंडमेंट्स लेकर आए, पार्लियामेंट का आखिरी दिन है। और यहां यह भी मैं आपसे अर्ज करता चलूं
जी,
हाउस को एडजॉर्न करना ना करना यह सरकारी पार्टी के हाथ में नहीं होता है, यह सरकार के हाथ में नहीं होता है, यह प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हाथ में होता है। राज्यसभा के अंदर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, वही राज्यसभा के सदर हैं, लोकसभा के अंदर स्पीकर होता है, वो फैसले करता है। तो ये फैसला, ये इख्तियार वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का था, राज्यसभा के चेयरमैन का था कि वो हाउस को कितनी देर के लिए एडजॉर्न करें और कब एडजॉर्न करें। 12 बजे के बाद उन्हें भी इख्तियार नहीं था कि वो हाउस को चला सकते हो, लेकिन अगर एक लम्हे के लिए मैं ये मान भी लूं, अपोजिशन का ये आर्गुमेंट मैं मान लूं कि आगे बढ़ाया जा सकता था, तो इसका फैसला भी तो राज्यसभा के सदर करते, चेयरमैन करते, सरकार को तो नहीं करना था। तो इस तरीके की गलत फहमियां लगातार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हमारा देश के साथ ये वादा था कि हम लोकपाल बिल लाएंगे, वजीर आजम ने इस सिलसिले में एक खत अन्ना हजारे को लिखा था और उन्हें कहा था कि पूरी पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया है, तो प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था वो अकेला कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं था, वो वादा पूरी पार्लियामेंट की तरफ से था जिसमें भारतीय जनता पार्टी और तमाम अपोजिशन पार्टीज थी। अब इन लोगों का किरदार क्या रहा यह फैसला देश करेगा, देश का आवाम करेगा।
جی بہت شکریہ راشد علی صاحب, میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. انصاری صاحب, 187 امینڈمنٹ یا ترامیم ظاہر اس بات کو ظاہر نہیں کرتی کہ گویا اپوزیشن جماعتیں بل کو پاس ہونے دینا ہی نہیں چاہتی تھی. ایک دن میں 187 امینڈمنٹ کیسے ہو سکتی ہیں؟
دیکھیے, میں نے پہلی بات تو میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ غلط لے کر کے آئیے گا تو اس میں امینڈمنٹ تو آئے گا, الگ الگ پارٹیوں کا الگ الگ نظریہ بھی ہوتا ہے. دوسری جو سب سے اہم بات جو راشد علوی صاحب ابھی بول رہے تھے کہ بھائی ہمارا بہمت ہے, 5 سال کے لیے ہم نے عوام نے میجورٹی ہم کو دیا ہے, ہم جو کہیں گے وہ ہوگا. تو بھائی آپ کہیں گے وہ ہوگا, آپ کا یہی جو غرور, یہی جو گھمنڈ جو بول رہا ہے کہ ہم جو کہیں گے وہی ہوگا, تو اپوزیشن جو ہم کو بھی مینڈیٹ جتنا ملا ہے اس کے مطابق سے جو جنتا کے خلاف بات ہوگی ہم اس کو اپنے دم بھر روکیں گے. اور آپ دیکھیے کہ آپ اپنے ایلائی کو جس کو مل کر کے آپ پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں, حکومت چلا رہے ہیں, آپ ترنمول آپ کے خلاف ہیں. آپ دیکھیے کہ آپ جو واک آؤٹ کر کے ایس پی اور جی ایس پی جو باہر سے آپ کے سمرتھن دے رہے ہیں وہ آپ کے خلاف ہیں. آر جے ڈی لالو جادو کی پارٹی جو آپ کو سپورٹ کر رہی ہے باہر سے وہ آپ کے خلاف ہو گئی. اور سب سے بڑی بات کہ بنا پوچھے ہوئے اپوزیشن کو انا ہزارے صاحب ان کے ٹیم کے ساتھ آپ بات کر رہے تھے, ان کو ریڈ کارپیٹ بچھا کر کے ان کا سواگت کر رہے تھے, تو آپ اچھی بات ہے کر رہے تھے. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کوڑا ہے کباڑا ہے, آپ اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے, اس سے بھرشٹاچار کو اور بڑھاوا دینے والا ہے. تو ساری دنیا غلط ہے اور ایک یہی معنی صحیح ہے. تو ایسا تو کوئی معنی کوئی گھمنڈ میں جو بولتا ہے وہی سوچ سکتا ہے, وہی بول سکتا ہے. تو بھائی ہم کو اپوزیشن نے دیا ہے, آپ ایسا بل لے کر کے آ رہے ہیں کہ اور سرکار کا اس پر شکنجا مضبوط ہو جائے گا. آپ کرپشن آپ کرتے رہیں گے, کوئی روک ٹوک نہیں رہے گی, تو ہم لوگ ایسا بل کے پاپ کے یہ اس گناہ کے ہم بھاگیدار کیوں بنیں گے, اس گناہ کے ہم جنتا میں کیا منہ دکھائیں گے. تو آپ کو تو چاہیے تھا کہ اس کو فیس کرتے, آپ اس کو فیس نہیں کیے. آپ کو یہ بھی پتا چلتا کہ کون, تو ان کو اصل یہ ہے کہ اس بل کے چلتے ان کو تو اگر جڑا بھی حیا اور شرم ہوتی تو ان کو ریزائن کرنا چاہیے ان کی سرکار کو, منموہن سنگھ کی سرکار کو. ان کو ایک منٹ بھی رہنے کا حق نہیں ہے, یہ کیسے رہ سکے, یہ تو ہار گئے ہیں. ان کو رہنے ہی کا حق نہیں, ان کے الہی ان کے ساتھ نہیں ہے. اصل ان کے ساتھ سنکٹ یہ تھا کہ دنیا کے سامنے یہ جاتا کہ یہ مائنورٹی یہ گورنمنٹ ہے, ان کے ساتھ بہمت نہیں ہے, ان کے الہی نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا, تو ان کو ریزائن کرنا پڑتا. تو ان کا ایک ایک دن اس کے بعد, اس 12 بجے رات کے بعد جس دن جمہوریت کا یہ قتل کیے ہیں, اس کے بعد ان کی سرکار ہی غیر قانونی ہے, ان کی سرکار کو چلنے کا ایک منٹ حق نہیں ہے.
جی بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا. انجان صاحب, وہ حلقے جو اس بل کے حامی تھے کہ بل کہیں نہ کہیں سے کسی صورت سے پاس ہو جائے, لوگ بل پارلیمنٹ میں پاس ہونے کے بعد, یعنی لوک سبھا میں پاس ہونے کے بعد راجیہ سبھا میں بھی پاس ہو جائے, اور جب پاس نہیں ہو سکا تو انہوں نے جہاں بھارتی جنتا پارٹی پر تنقید کی اور اس کی الائی جو پارٹیاں ہیں اس پر تنقید کی, وہیں آپ پر بھی تنقید کی, یعنی بائیں بازو کی جماعتوں پر, کہ کہیں نہ کہیں سے کمیونسٹ پارٹیاں جو ہیں وہ لوک پال بل پر ہی صحیح بی جے پی کے ساتھ ایک ہو گئیں.
اب بی جے پی کے ساتھ ایک ہو گئی یا کیا ہو گئی, ہم سے کیا کون تنقید کر کے بات کر رہا ہے, جس کو ابھی کہا کہ ہم نے اپنی پارٹی اور اپنے سہیوگی پارٹیوں سے بات کر کے, ان کی پارٹی کے خود ہی ترنمول کانگریس جو ان کے ساتھ سرکار میں ہے, جن کے 8 منسٹر ہیں, وہی تو ان کے خلاف ڈنڈا لے کر کھڑے ہو گئے راجیہ سبھا میں, راجیہ سبھا میں کہ لوک سبھا راجیہ سبھا میں ان کی پارٹی کے سمرتھک ہے سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی اور لالو پرساد جی کی پارٹی, وہی لوگ تو کھڑے ہو گئے ان کے خلاف بھاشن کرنے کے لیے. اپنے پیر دیکھیں, مور نہ بنے کی بڑے خوبصورت ہیں اور اس کے مور کے پیر بڑے خراب ہوتے ہیں. تو جن جو کام کا چریتے جو سرکار ختم ہو گئی لگی ہاتھ, ابھی آپ کو معلوم پڑ جائے گا جو ایک کے بعد ایک چھوڑ کے کیا ہے ملک میں برسر اقتدار ہے, ڈنڈے سے چلائیں گے ملک کو, برسر اقتدار ہو کے ڈنڈے سے ملک کو نہیں چلایا جاتا. اور چلانے کا ہوتا کہاں ہے کانگریس پارٹی, ایک صوبے میں ہے, راجستھان میں ہے, دلی میں ہے اور آسام میں, باقی جو سب اپنے سہیوگیوں کے ساتھ ہی مل کے وہ سرکار چلا رہی ہے. तो सरकार जब सहयोगियों के साथ चलाना है तो उसके तौर तरीके भी समझने चाहिए। अब बेचारी अब झगड़ा चल रहा है इसी में कि प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे कि जबरदस्ती हो जाए, सोनिया गांधी को नहीं चाहती थी कि बातचीत करके होते, झगड़े हैं अलग अलग। मैंने कहा ना आपसे कि सरकार के इरादे क्या थे, मैंने तो 6:30 बजे स्टार टीवी में बता दिए थे, सारा देश ने सुन लिया। तो सरकार और राष्ट्रपति रात के 12 बजे नहीं चल सकता, मैंने तो बता दिया कि रात के 12 बजे बाद भी चला है। और ये सीधे सीधे सरकार ने हवाला दिया जो पार्लियामेंट मिनिस्टर थे पीके बंसल साहब खड़े हुए रात के 12:05 पर कि सरकार के पास ये फैसला है कि सरकार तय करेगी कि सदन की कार्रवाई चलेगी कि नहीं चलेगी, और जो सरकार का फैसला होगा होता है उसे सभापति यानी प्रिसाइडिंग अफसर को मानना पड़ता है। ये उन्होंने आईन का हिस्सा अपनी तरफ से रख दिया, और रखने के बाद उनकी बात सुन करके हमारे जो सभापति थे राज्यसभा, उन्होंने एकदम से ऐलान कर दिया कि अब मुलतवी किया जाता है, अब सदन नहीं चलेगा। तो सरकार तो बहस करने से भाग रही थी, सरकार को बहस करने के तौर तरीके से ही समझ में आ गया था कि अगर वो हार जाती तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता। इसने इस्तीफे से बचने के लिए सरकार तो और सरकार इस्तीफा सरकार क्यों हार जाती, सरकार क्या हार जाती अपने ही दोस्तों की वजह से, जो उनकी सरकार में मंत्री शामिल है वही पार्टियां हट गई। और इस तरीके से एक नया रास्ता आपने देखा कि सरकार ने निकाला। इसलिए आपको मैं कह सकता हूं कि बाएं बाजू पर हमला करना है, बाएं बाजू तो अब सरकार पर हमला कर रहा है। जब ये सरकार अमेरिका की गोद में बैठी हुई है, ये सरकार के उसके हुजूर वहां अमेरिका वाशिंगटन में बैठे हैं, उसके मजूर यहां बैठे हैं, ये सरकार हर मामले में इंपीरियलिज्म के साथ हाथ मिला रही है, अमेरिका के साथ हाथ मिला दी तो बाएं बाजू का तो उससे होगा ही दो दो हाथ चार चार हाथ, हम उनकी हर उस बात का। और ये तो सीधे सीधे हिंदुस्तान के आईन का सवाल था, इसीलिए हमने अपनी बात कही। अब सरकार नहीं समझ पाई, कोई वजह होगी, अब उनकी भी अपनी मजबूरियां होंगी, हम जानते हैं उनकी मजबूरियों को, हम समझते हैं। एफडीआई का बिल लाए थे वो मजबूरी थी, लोकपाल का बिल ला देंगे तो सारे मंत्री जाएंगे ना, ऐसे ही लोकायुक्त का विरोध कर रहे थे
जी।
आखिर में सारे रिपोर्ट आई, यूपी के अंदर 12 मिनिस्टरों को जाना पड़ा, इसीलिए कोई भी सरकार लोकायुक्त या लोकपाल के खिलाफ है, ये तो बुनियादी बात है। उसमें कांग्रेस अगर मुखालफत कर रही है और लोकपाल मजबूत लोकपाल नहीं लाना चाहती तो इसमें हैरत की क्या बात है, इसमें कौन सी गलत बात है। जो सरकार में रहेगा, जो मजबूती कह रहे हैं कि हमारी सरकार में, जो सरकार चलाना चाहता है और जो सरकार में रहना चाहता है वो अपने मंत्रियों को थोड़ी ही चाहेगा कि निकाल दिया जाए। और ये सब मुलविस है, सबके सब भ्रष्टाचार में लगे हैं, भ्रष्टाचार रोक नहीं सकते, ये
अनजान साहब का हिस्सा है। अनजान साहब, आपकी पार्टी या जो आपकी जो इत्यादी पार्टियां बाय महाज, उनको इस बिल के किन शिकों पर सबसे ज्यादा एतराज है?
आपके पास उतना वक्त नहीं होगा जिस पर आप चर्चा कर सके एक शिकों पर।
नहीं नहीं, अहम किन एक
किसी आईन में लिखा हुआ है कि 172 अमेंडमेंट नहीं दिए जा सकते, यहाँ 450 अमेंडमेंट आए हैं पार्लियामेंट के अंदर, और सरकार के दफ्तर का काम है कि उसको फौरन सॉर्ट आउट करे और देख करके देखे कि क्या है। अरे हमारे तो दरकिनार फेंक देते सारे के सारे, जितने हमारे अमेंडमेंट थे, हमारे सुझाव थे, अपने दोस्तों के सुझाव मान लेते जो उनके सरकार में काबिने में मंत्री हैं 8।
जी बहुत शुक्रिया आपका।
लालू प्रसाद जी की बात, जो उनके लिए 24 घंटा बाजा बजाते रहते हैं, उन्हीं की बात सुन लिए होते
जी।
तो हमारे बारे में क्या पूछ रहे हैं, हम जो कहेंगे तो कहेंगे कि सरकार के खिलाफ ही बोलना है, लेकिन सरकार के हामी का, सरकार जिनके साथ मिलकर चल रही है, सरकार में जो मंत्री बैठे उन्हीं के मंत्रियों का क्या सवाल है, उसी को अगर हल कर दे तो पास करा लेते अपना
जी। बहुत शुक्रिया आपका।
चली जा रही है ये गिफ्ट।
अनजान साहब, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। राशिद अलवी साहब, लोक आयुक्त के ताल्लुक से गुंजाइश जो रखी गई है उसकी मुखालफत बुनियादी मुखालफत है, तो क्या अगर मामला यहाँ पर आकर ठहरा तो हुकूमत पीछे हटने पर तैयार होगी? राशिद अलवी साहब,
नहीं मैं समझ सवाल सुन नहीं पाया आपका।
मैं अर्ज ये कर रहा था कि जो बुनियादी एतराज है यानी 187 अमेंडमेंट तो अपनी जगह, लेकिन जो सबसे अहम वो ये कि लोक आयुक्त से मुतालिक जो गुंजाइश रखी गई है मसवेदे में उसकी मुखालफत की जा रही है सबसे ज्यादा, तो क्या लोक आयुक्त के मामले पर हुकूमत पसपाई अख्तियार कर सकती है और पीछे हट सकती है और अपोजिशन के मुतालबात को तस्लीम करने पर मजबूर होगी?
उर्दू का एक शेर है, ये कैसे शख्स हैं कितनी ही अच्छी बात कहो, ये कैसे शख्स हैं कितनी ही अच्छी बात कहो, बुराई का कोई पहलू निकाल लेते हैं। तो लोकपाल बिल हम कैसा ही लेकर आए, हमें मालूम है जिन्हें मुखालफत करनी है उन्हें मुखालफत करनी है। और टीवी चैनल सबसे आसान तरीका है कि मुझे कोई सबूत तो पेश करना नहीं है यहां पे, यहां तो जो मैं बोलूंगा वो देश के लोग सुनेंगे। अगर हमें लोकपाल पास ना कराना होता तो हम लोकसभा के अंदर कैसे पास कराते, क्यों पास कराते? राज्यसभा के अंदर 187 अमेंडमेंट्स के लिए वक्त दरकार होता है, एक लंबा वक्त चाहिए एक एक अमेंडमेंट पर गौर करने के लिए और उसके बाद उस पर वोटिंग कराने के लिए। लेकिन अमेंडमेंट से सरकार कभी पीछे नहीं हटती है, अमेंडमेंट 187 हो या 1087 हो, लेकिन उसके लिए वक्त दरकार होता है। 12 बजे के बाद वक्त था नहीं, सेशन खत्म होने वाला था, इसलिए कांग्रेस पार्टी के इख्तियार में कुछ था नहीं। और राज्यसभा में अगर हम हार भी जाते तो इस्तीफा देना नहीं पड़ता है, लोकसभा में अगर हारा जाता है तो इस्तीफा देना पड़ता है। हमारी राज्यसभा में मेजॉरिटी है ही नहीं, हम ये बात लगातार कह रहे हैं और सारा देश जानता है कि राज्यसभा में कोई भी कानून पास कराने के लिए हमें दूसरी सियासी जमातों पर मुनहसिर करना पड़ता है, हमारा इन्हसार दूसरी सियासी जमातों पर होता है। आप देखिए जो सियासी जमातें हमें लोकसभा में मदद कर रही थीं, वही सियासी जमातें राज्यसभा में आकर हमारी मुखालफत कर रही हैं। तो ये सवाल तो उन लोगों से पूछना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया। ये जरूर है कि बजट सेशन से पहले हम कोशिश करेंगे कि तमाम सियासी जमातों से दोबारा बातचीत हो, उनसे इत्तफाक राय बनाई जाए, लोकपाल के अंदर अगर कुछ तब्दीलियां करनी हैं उनके अंदर तब्दीलियां की जाएं, और जो तब्दीलियां की जाएंगी उसके बाद वापस फिर लोकसभा में जाना होगा। वक्त दरकार है, वक्त लगेगा, लेकिन हम चाहेंगे कि तमाम सियासी जमातों के साथ मशवरा किया जाए। अगर राज्यसभा में खुदा ना करे ये लोकपाल फेल हो जाता तो फिर हम कुछ कर भी नहीं सकते थे, फिर किसी मशवरे का की जरूरत ही नहीं रह जाती, फिर लोकसभा में भी नहीं जाया जा सकता था। आज इतना गुंजाइश बाकी है कि सियासी जमातों से दोबारा मशवरा किया जाए। और यहां यह बात मैं कहूंगा, वो सियासी जमातें खासतौर से भारतीय जनता पार्टी जो सबसे ज्यादा सख्त लोकपाल की बात करती है, गुजरात के अंदर क्या लोकपाल है? 8 साल से आपने कानून नहीं बनाया। उत्तराखंड के अंदर जो लोकपाल आपने बनाया उसमें तय किया कि अगर लोकपाल के तमाम मेंबरान तमाम अराकीन 100% कहेंगे, इत्तफाक राय रखेंगे, तभी वजीर आला के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। यही सख्त कानून है हमने यहां बनाया कि अक्सरियत के साथ अगर लोकपाल के अराकीन फैसला करेंगे तो वजीर आजम के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि हम नहीं चाहते थे कि वजीर आजम का कलमदान इसके तहत आए, उनकी इज्जत बाकी रहनी चाहिए, लेकिन तमाम लोगों के मशवरे के बाद अगर इत्तफाक राय से इस बात को कहा गया तो हमने वजीर आजम के कलमदान को भी लोकपाल के तहत रख दिया। लेकिन यह कहना कि हम इस कानून को पास नहीं कराना चाहते, यह बेबुनियाद बात है। मैं आपके जरिए सिर्फ इतना कह सकता हूं कि यह कांग्रेस पार्टी का और सरकार का कमिटमेंट है, हम इस कानून को जरूर पास कराएंगे। देर हो सकती है लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि इस कानून को पास ना कराया जाए।
बहुत शुक्रिया अतुल कुमार। अंजान साहब, कांग्रेस वाले कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या फरवरी में बजट इजलास में हम फिर पेश करेंगे और आप लोगों से मशवरे के बाद पेश करेंगे, तो अब आपका रवैया क्या होगा? अतुल कुमार अंजान साहब, बाहर ऐसा लगता है कि रबता मुनक़ा हो गया है। अंसारी साहब आप टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं
जी?
अभी राशिद अली साहब ने कहा कि सख्त लोकपाल की बात हो रही है, तो गुजरात में कौन सा लोकपाल मौजूद है? और आपसे यूं सवाल किया जा रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी की इत्तेहादी हैं, एक मिनट के अंदर मैं जवाब चाहूंगा।
नहीं देखिए, इनकी मंशा नहीं है और इसी गलत मंशा का ये नहीं पास कराना चाहता है एक मजबूत लोकपाल जो सरकार के कब्जे के बाहर हो, एक निष्पक्ष हो, न्यूट्रल हो, ऐसा नहीं चाहते। और इसीलिए इस तरह की गलत चीजें इसमें भर दी है कि लोग नहीं पास करेंगे और जिम्मेवारी जाएगी अपोजिशन के मत्थे पर कि ये लोग नहीं पास होने देना चाहते हैं। तो जो सिविल सोसाइटी बाहर बैठी हुई है, जो दूसरे मीडिया के लोग बैठे हुए हैं, वो तो सब लोग कह रहे हैं कि ये फालतू बिल लेकर के आए हैं। तो इसमें 107 का 1007 भी अमेंडमेंट किया जाए तो वो नाकाफी होगा। इस तरह की चीजें इसमें भरे हुए हैं।
बहुत शुक्रिया अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम आपके शुक्रगुजार हैं। राशिद अली साहब का भी बहुत शुक्रिया, अतुल कुमार अंजान साहब का शुक्रिया, अपने मौजूद नाज़रीन के भी हम शुक्रगुजार हैं कि प्रोग्राम के आखिर तक उन्होंने हमारा साथ दिया। नाज़रीन, आपने हमारे मेहमानों की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई, नतीजा आपके हवाले। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे अली बासिज़ी और दीगर साथियों को इजाजत दीजिए।